hadiah. लक्ष्मी के मुकाबले जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है और लक्ष्मी लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान देती है, सब मनोकामनाएं पूरी नहीं करती। दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि लक्ष्मी भगवान ने जो दिया है वो ही देती है, उसी से संसार का अंतिम और पहला और सब हमेशा के लिए कल्याण होता है। बाकी जो कुछ भी देंगे भगवान के दिए हुए के अलावा अपनी मनमत पर या कोई कीमत पर, तो वो सदा काल के लिए सुखदाई नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट दुखदाई जरूर होगा। तो बताओ किसने अच्छा किया और किसने गलत किया? है, है? सुनने में तो अच्छा लगता है क्या कि जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, भाई जगदम्बा की तरफ चलो, है? लेकिन असलियत क्या है कि भगवान जो कुछ देता है उस दिए हुए को जिसने महत्व दिया वो जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहता है, और मनुष्य जो कुछ देते हैं वो अल्पकाल का देते हैं सुख, और सदाकाल का रिजल्ट में दुख निकलता है। इसलिए भगवान ने जो कुछ दिया उसको कितनों ने लिया? भगवान ने जो कुछ दिया उसको कितनों ने लिया? भगवान ने जो दिया वो पूरा पूरा कितनों ने लिया?
9 लाख
ने लिया। अगर भगवान का दिया हुआ पूरा पूरा 9 लाख ले लेवे तो सारे ही नरसिंह नारायण बन जावे? 4.5 लाख 4.5 लाख तो प्रजा है। भगवान आकर के प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है? हैं? तो प्रजा बनना, प्रजा का पद लेना, ये अच्छी बात हुई। फिर
राजा बनना अच्छा,
हाँ राजा बनना अच्छा है। तो कितनों ने लिया? 8 लेते हैं और 8 में भी नंबर वार है। क्या 8 में भी कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर है? अगर फर्क नहीं होता तो नंबर भी नहीं बनते। तो एक ही है क्या जो किससे लेता है? भगवान बाप से ही सारा ज्ञान हप करता है और बाकी सिर्फ नंबर वार निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसा भी समय आएगा कि सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? कौन? जगदम्बा राज करेगी। माना दुनिया जो है वो अल्पकाल के ऊपर फिदा हो जाती है, हैं? शिव बाबा की जो प्राप्ति है उसका महत्व नहीं देती। और
ये बात बात क्रिया करना अच्छा है, ये सब पत्ते को सच लाइट देना अच्छा है।
एक बात को याद कर रहा, जो बड़ी बात है क्या, सबको सुख करना पड़ा,
सबको सुखी करना अच्छा है या एक बाप को याद करना अच्छा है? सबको सुखी करो, गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को, सबको सुखी कर दो। सुखी करना तो बड़ा काम हो गया ना, अरे जो सुखी करने वाला है उसको कहा जाता है सुख का सागर। कौन किसको कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है सुख का सागर। तो भगवान उतना सुखी नहीं कर पाएगा, हम तो कर दे। अब भगवान तो 5000 साल में एक ही बार आएगा, तब कहीं सुखी करेगा। अरे हम तो 84 जन्मों में जिंदा रहते हैं ना, तो 84 जन्मों में 21 जन्म तो सुख लेते देते ही है, उसमें तो कोई तरह की बात ही नहीं। बाकी 63 जन्म भी हम क्यों ना सुखी करें सारी दुनिया को, अच्छी बात है ना? है? ये बड़े बड़े इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए। क्राइस्ट देखो दुनिया की आबादी 500 करोड़ और 250 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्रिश्चियंस वो क्राइस्ट को मानती हैं सुखदाता। तो क्या वो सुख दे पाता है सारी दुनिया को? हैं? अरे सारी दुनिया को छोड़ो, 250 करोड़ को भी जो उसकी प्रजा बनते हैं उनको भी सुख नहीं दे पाता। मनुष्य जिसे नर कहा जाता है वो नरक बनाएगा या स्वर्ग बनाएगा? नर नरक बनाता है, नर नहीं सुख देता है किसी को। सुख भी देंगे तो विकारी सुख दे देंगे, इसलिए असली सुखदाता कौन है? एक शिव बाबा, एक भगवान सुखदाता है, वो सुख का सागर कहा जाता है। हम तो सब आज सतो प्रधान है तो सुखदाई दिखाई पड़ते हैं, और कल हमारी आत्मा क्या बनेगी? तमो प्रधान बनेगी, तब क्या हो जाएंगे? हैं? तब दुखदाई हो जाएंगे। तो सुख देना अच्छा है या याद करना अच्छा है? भगवान को याद करें, भगवान की याद से हम भी सुखी रहेंगे और हमारे याद के वाइब्रेशन के बीच में जो भी आ जाएंगे सब सुखी हो जाएंगे।
खंड पॉइंट में एक पॉइंट आया है बाबा, ये भी अविनाशी सर्जन है, ये भी अविनाशी सर्जन है
शिव बाबा।
हाँ, फिर ब्रह्मा ने विज्ञान भूत किराया है ना बाबा?
हाँ,
वो भी वो भी
है
ब्रह्मा को ब्राह्मण जन्म दिया,
ज्ञान तो सुनाया, लेकिन जो ज्ञान, ज्ञान माने समझ, हाँ, जो ज्ञान सुनाया, जो समझ दी, उस समझ को उन्होंने धारण किया। ज्ञान माने समझ, और सबसे बड़ा ज्ञान है बाप का ज्ञान। बच्चा पैदा हुआ, बड़े साहूकार का बच्चा पैदा हुआ, अब वो साहूकार के वर्षे का मालिक कब बनेगा? बड़ा किस आधार पर कहा जाता है? वो पागल का पागल बना रहे तो बड़ा हो जाएगा? हैं? तो कौन सी बात का ज्ञान सबसे पहले उसे हो जो साहूकार के वर्षे को प्राप्त कर ले? बाप का ज्ञान होना चाहिए, पहले पहले तो ज्ञान बाप का होना चाहिए। तो ब्रह्मा है, अम्मा है, दुनिया की बड़े से बड़ी अम्मा है, अम्माओं की भी अम्मा है, तो वो बप्पा का ज्ञान देना चाहिए उसे? नहीं, उसे खुद ज्ञान है। अरे ये क्या बात हुई, जिसको खुद ज्ञान है ही नहीं और वो दूसरों को क्या क्या देगा? फिर आप अपनी बात को दोहराओ। हाँ,
16108 गोपियाँ एडवांस में से निकलेगी या बेसिक में से निकलेगी?
16000 की जो माला है उसमें लेफ्टिस्ट भी है या राइटियस भी है? दोनों है, हैं? दोनों है। तो जब दोनों है, लेफ्टिस्ट भी है राइटियस भी है, तो बाबा ने तो बोला है जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा है आधे पापात्मा बचेंगे।
तो दोनों में से
तो विजयमाला के जो मणके हैं उनको विकारों पर विजय पाने वाले माला के मणके कहेंगे या हार खाने वाले मणके कहेंगे? हैं? हार खाने वाले, विजय पाने वाले। तो वो तो पुण्यात्मा हुए या पापात्मा? वो तो पुण्यात्मा हो गए और बाकी आधे पापात्मा हो गए। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ
बाबा।
हाँ जी, भाइयों को भी पूछ लेने
दो।
भाइयों को भी पूछ लेने दो। हैं? इस धरती पर आ जा रहे, ये आकाश है ना, ये बहुत ऊंचा है ना? हैं? जो राजा है वो कहाँ बैठता है? गड्ढे में बैठता है। राजा कहाँ बैठता है? ऊपर बैठता है। और प्रजा? प्रजा नीचे। और जो भी मातहत हैं, उसके अधिकारी हैं, वो भी नीचे बैठते हैं। तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, जो आकाश में बैठा हुआ है, आकाशी आकाश, और हम तो पाताल ही पाताल। तो जो ऊंचे थे ऊंचा, वो इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, वो ऊंची स्टेज को छोड़ेगा तभी तो हमको संग का रंग देगा। बोलो, अगर ऊंची स्टेज को नहीं छोड़ेगा और हमारा संग नहीं देगा, हम तो डूबे हुए हैं। कोई डूबे हुए को निकालने जाता है तो डुबकी लगाता है कि नीचे नहीं है? हाँ, तो नीचे वाला जो डूबा हुआ है वो तो कहेगा, अरे भाई तू कहाँ पहाड़ पर बैठा हुआ है, चोटी पे नीचे आ जाए ना, मेरे को उद्धार कर ले। उद्धार करने के लिए नीचे आना पड़े ना। तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, क्या ये ऊंची स्टेज तू छोड़ दे? कैसी स्टेज? ऊंची स्टेज छोड़ दे, नहीं तो मनुष्यों की कैसी स्टेज होती है? हैं? अरे बहती गंगा है, हम भी हाथ धो ले, कैसी स्टेज होती है? हैं? ये नीची स्टेज है, ये मनुष्यों की स्टेज, दुर्योधन दुशासनों की ये स्टेज होती है। क्या क्या स्टेज होती है? हैं? अरे कहीं मौका लगा, अरे हाथ धो लो, हम भी हाथ धो ले। तो ये जो मेंटेलिटी है मनुष्य की, वो ऊंचे से ऊंची की मेंटेलिटी नहीं है। उसकी मेंटेलिटी क्या है? हैं? उसकी हाथ धोने की मेंटेलिटी है, अरे ये डूबी हुई है, चलो इसको डुबका एक और डुबके में मार लूं। हैं? ऐसी डुबकी है, ऐसी उसकी मेंटेलिटी है नहीं। तो बोला, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब ऊंची स्टेज को छोड़ दे, संसार की लोकलाज छोड़ दे, आ जा। तो नीचे आता है तभी तो संग का रंग लगाता है। नीचे आएगा ही नहीं, नीचे की स्टेज में नहीं आएगा तो संग का रंग कैसे लगेगा? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ।
पांडुरंग बोलते है ना, सब लोग जाते हैं
पांडुरंग
बोलते है, मातपिता बोलते है, तो वो क्या कैसा बोलते पांडुरंग?
पूरे लोग मानते हैं,
सब लोग भक्त लोग मानते
हैं। वो तो सभी देवताओं को सभी भक्त मानते हैं, जिसको जो अपना इष्ट मानता है उसको वो मानते हैं, भगवान मानते हैं। आप उसमें प्रश्न तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ है,
कृष्ण का जन्म,
हाँ
कृष्ण की बात है,
पांडुरंगा पार्क किसका है?
ये तो जो पूजने वाले हैं, कोई राम को पूजते हैं तो पूछेंगे राम का पार्ट किसका है, कोई कृष्ण को पूजते हैं कहेंगे कृष्ण का पार्ट किसका है। अब बाबा तो कहते मैं तो पार्ट बताने नहीं आया हूँ, मैं कोई बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा कि किसका पार्ट क्या है। जिसका जो पार्ट होगा वो अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाचा से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगा। हाँ, दूसरा अभी क्या है? एक माता पूछ रही है,
कृष्ण का जन्म संबंध में।
हाँ, जो शास्त्रों में जिसे कृष्ण के लिए भागवत लिखी हुई है, कृष्ण के चरित्र दिए हुए हैं, बाबा तो कहते हैं वो कृष्ण के चरित्र नहीं है, किसके हैं? 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 अरे उस माता को बोलने दो। हाँ, वो प्रजापिता के चरित्र हैं। वास्तव में नाम डाल दिया है कृष्ण का, जैसे कि ब्रह्मा कुमारियों ने गीता का भगवान किसको बना दिया है? कृष्ण माने ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान बना दिया। अरे ब्रह्मा बाबा गीता का भगवान होता तो यज्ञ के आदि में छोड़ करके क्राची अकेला क्यों भाग गया है? भगवान होगा वो भागेगा क्या? ये बात दूसरी है कि युक्ति अपनाए। जैसे राम भगवान के लिए कह देते हैं कि जंगलों में मारे मारे फिरे, जंगलों में रह करके उन्होंने वो क्या कहते हैं गुरिल्ला युद्ध किया, रावण के ऊपर आक्रमण किया जंगल में रह करके। तो राम भगवान को लोग सोचते हैं भगवान को जंगल में छुपने की क्या दरकार। कृष्ण के लिए सोचते हैं कंस के डर से गांवों गांवों में छुपने की भागने की क्या दरकार। शंकर के लिए सोचते हैं कि भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फेरे, इसकी भगवान को क्या दरकार। अरे भगवान को ये दरकार नहीं है, लेकिन ये युक्ति है कि खून खराबा ना हो, क्या है हाँ, हिंसा ना हो, सांप मरे लाठी भी नहीं टूटे, तो ऐसी युक्ति अपनाते हैं। तो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, गीता का भगवान तो शिवशंकर भोलेनाथ ही है, लेकिन वो शिवशंकर भोलेनाथ किस समय की बात है? सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, द्वापर की, कलयुग की, कब की बात है? संगम युग की बात है। तो जो संगम युग की असलियत बात है, वो बात सारी महिमा कृष्ण के ऊपर ठोक दी, और काम किसने किया है? यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता ने काम किया, मक्खन चुराना, मटकी फोड़ना, ये किसका काम था? प्रजापिता पिता काम था, लेकिन नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा बाबा का। जो गीता वो एक किताब लिखी है अद्भुत जीवन कहानी, उस अद्भुत जीवन कहानी में किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा बाबा का नाम डाल दिया, प्रजापिता को छोड़ा दिया। बाबा भी मुरली में कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र तो बनाते हैं, है? उस त्रिमूर्ति के चित्र में त्रिमूर्ति शिव की लाश भी गुम कर दी, उसका नाम निशान गुम कर दिया। तो वास्तव में वो कृष्ण का हो या भगवान का हो, वो सतयुग का कृष्ण नहीं है, बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला वो कौन सा कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण है, क्योंकि शरीर तो एक ही है लेकिन उसमें दो आत्माएं हैं, एक राम वाली आत्मा जिसे शंकर कहते हैं और एक कृष्ण वाली आत्मा जिसे ब्रह्मा कहते हैं। एक ही शरीर में दो आत्माएं जिनको बाप दादा कहते हैं। ब्रह्म कुमारियां तो जानती ही नहीं है कि वास्तव में बाप दादा कौन है। वो कहते हैं बाप दादा शिव बाप, और गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है वो दादा। अच्छा ब्रह्मा की सोल आती है वो तो सच्ची बात है, लेकिन गुलजार दादी में क्या पाप आता है? हैं? आता ही नहीं, वो तो ब्रह्मा के शरीर में आता था छोड़ के गया। गुलजार दादी के शरीर में तो ब्रह्मा की सोल आती है, क्योंकि मुरली में बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूं। सूक्ष्म वतनवासी तो पवित्र होते हैं, मैं पवित्र में प्रवेश करूंगा क्या? है मैं कैसे पवित्र में प्रवेश करूं? और गुलजार दादी भी जन्म से लेकर यज्ञ में पल रही है, छोटी सी बच्ची थी तब से यज्ञ में आई हुई है, वो गुलजार दादी को क्या आप पवित्र कहेंगे? है वो तो पवित्र है जन्म से ही, उसमें शिव बाबा आएंगे? ये सब झूठी बातें, ये सब भक्ति मार्ग की झूठी बातें हैं। वास्तव में असली बात क्या है? असली बात यह है, जैसे आज की मुरली में सुना, क्या सुना था? है अरे मुरली भूल गए? आवेंगे हाँ, आकर के हमको विष्णु बना देंगे। कौन? बाबा। किसने बोला? नहीं, ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि अभी बाबा आए हैं, वाणी सुना रहे हैं मेरे द्वारा, फिर बाबा आवेंगे और हमको क्या बनावेंगे? विष्णु बनावेंगे। इसका मतलब है ब्रह्मा बाबा को इस बात का पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं। उनके मुख से बुलवाया किसने? उसने, और उन्होंने बोल दिया कि हम बाद में विष्णु बनेंगे, बनाने वाला कोई दूसरा होगा, बाबा आवेगा और विष्णु बनावेगा। तो जो आने वाला है वो वास्तव में शिव बाबा की बात है, प्रैक्टिकल में आवेगा। कोई भी बच्चा आता है तो पहले पेट में भ्रूण आता है, बीज पड़ता है तो भ्रूण तैयार होता है, वो भ्रूण बढ़ करके पिंड तैयार होता है निर्जीव। उस पिंड में चार पांच महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तो जो आत्मा प्रवेश किया वो संक्षेत्र की बात, जो पहले से ही घोषणा कर दी थी 10 साल पहले, क्या आज से 10 वर्ष का पूर्व कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो लक्ष्मी नारायण का जन्म के जो टाइम है वो क्या बताया? 1976। आत्मा ने प्रवेश किया, शिव बाबा आया नहीं, आया है आया नहीं, वो आत्मा आ गई। कौन सी? राम वाली आत्मा। अब वही आत्मा फिर पेट में और बढ़ती है, 40 साल पूरे होते हैं, जैसे गर्भ में 4 महीने पूरे होते हैं, 5 महीने में आई, 4 महीने और पूरे हुए, 9 महीने में प्रत्यक्ष होती है। तो ऐसे ही यहां भी है, वो 40 साल 36 से लेकर के 76 तक सोल ने प्रवेश किया, उसके बाद अगले 40 साल और तब वो सोल प्रत्यक्ष होकर के बच्चे के रूप में जन्म लेती। तो ये है कि वो बच्चा जो कृष्ण बच्चा है, जो अभी पढ़ाई पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला कौन है? हैं?
पढ़ाने वाले
हैं? अभी संक्षेत्र के बाद कृष्ण की सोल चंद्रमा की सोल प्रवेश करके शंकर में प्रवेश करके रामवाली आत्मा में प्रवेश करके पढ़ रही है। पढ़ाए कौन रहा है?
जो प्रोजेक्टर जो बाबा पढ़ा रहे ना, रामवाली आत्मा पढ़ा रहे, कृष्ण वाली आत्मा पढ़ रही।
शिव बाबा आया? अरे یہ کیا بات ہے؟ رمل یادو پڑھاتی ہے؟ اچھا مانیٹر پڑھاتا ہے کیا اسکول میں؟ ساری پڑھائی مانیٹر پڑھاتا ہے یا ٹیچر بھی پڑھاتا ہے؟ ٹیچر پڑھاتا ہے. بابا نے بولا تم بچے مجھے جتنا یاد کرتے ہو اتنا میں تمہارے ساتھ ہوں. شیو بابا نہیں آ گیا، رام والی آتما میں شیو بابا نہیں آیا. سن 76 میں نرسے جو نارائن بننے والی آتما ہے وہ تو پرتیکشتا روپی جنم لیتی ہے، لیکن وہ پرتیکشتا روپی جنم لینے والی آتما پڑھائی نہیں پڑھاتی ہے. پڑھانے والی اس میں کون ہے؟ شیو بابا. کیسے پڑھاتی ہے؟ جتنا وہ یاد کرتا ہے اتنا آ کر کے اس میں پڑھائی پڑھاتی ہے. انوبھو کی بات بتاؤ. اچھا جب پڑھائی پڑھاتی ہے تو اس سمے مرلی پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ آتما. اور پڑھانے والا کون ہوتا ہے؟ رام علی آتما پڑھاتی ہے. پھر گڑبڑ ہے. ارے رام کرشن دونوں آتمائیں ابھی پڑھنے والی ہیں یا پڑھانے والی ہیں؟ دونوں ہی آتمائیں پڑھنے والی ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے وہ مانیٹر ہے. مانیٹر کوئی کلاس میں ہوتا ہے نا تو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے تو اس کو مانیٹر بنا دیتے، یہ ہو سکتا ہے. باقی ٹیچر تو نہیں ہو جائے گا. تو پڑھنے والی آتمائیں وہ دونوں ہیں، پڑھانے والا کون ہے؟ شیو بابا. اچھا کیا
رام والی آتما میں شیو پرویش ہے نا؟
ہاں ہمیشہ پرویش ہے. ہاں جب بچہ آئے گا تو ہمیشہ ہی بچہ ہوگا کہ کبھی بچہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا؟ مہا شیوراتری ہوگی، شیو کا جینتی ہوگی، شیو جنم لے گا تو شیو ساکار کے دوارا جنم لے گا یا نراکار جنم لیتا ہے؟ تو ساکار جو جنم لیتا ہے شیو، وہ آ گیا ابھی. مہا شیوراتری ہوگی پھر کیا کے لیے جھوٹ بولتے؟ تو ہاں تو شیو بابا پڑھاتا ہے. اس کا پروف یہ ہے، سب انوبھو بھی کرتے ہیں کہ کبھی تو برہما بابا ساری مرلی ایسے ہی پڑ جاتے ہیں، کوئی سمجھانی دیتے ہیں؟ ہے تو جب سمجھانی نہیں دیتے ہیں تب کیا سب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ شیو بابا پڑھا سمجھاتا ہے؟ نہیں سمجھاتا ہے. برہما بابا نے مرلی پڑھ دی، ریڈنگ کر لی، پڑھائی تو کچھ نہیں ہوئی. اسکول میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ماسٹر کہتا ہے اچھا پڑھو تو پڑھائی پڑھنے لگ پڑتے ہیں، یا مانیٹر سے کہہ دیتا اچھا پڑھو تو مانیٹر کچھ دیا پہچا دو ایک دو ادھر ادھر بتاتا ہوگا اور باقی ساری مرلی پڑ گئی. تو مطلب یہ ہے کہ سدائو شیو بابا نہیں پڑھاتا ہے، کبھی کبھی پڑھاتا ہے. جب پڑھاتا ہے تو شیو بابا نئی نئی باتیں بتائے گا تو ثابت ہوتا ہے کس نے پڑھائی پڑھائی، شیو بابا نے پڑھائی. اور جو وہی باتیں پرانی پرانی بار بار پڑھی جا رہی ہیں تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہاں رام یا کرشن والی آتمائیں ہیں وہ پڑھائی رہی، ہم نہیں، ہم کو شیو بابا نہیں پڑھائی رہے. تو ثابت یہ ہوا کہ سنگم یوگ میں جو پارٹ چل رہا ہے ابھی وہ کرشن والی آتما بچے کے روپ میں پڑھ رہی ہے یا یہ سوکشم بات ہے؟ بچے کے روپ میں پڑھ رہی ہے، وہ پرویش کر کے پڑھ رہی ہے. کیا؟ پرویش کر کے پڑھ رہی ہے. اور وہ آتما جو پڑھ رہی ہے وہ ابھی مان نہیں رہی ہے، سمجھ نہیں رہی ہے. اور رام والی آتما سمجھ رہی ہے. یہ 40 ورش جب پورے ہوں گے تو رام والی آتما کی پوری پڑھائی ہو جائے گی اور کرشن والی آتما کی بھی پوری پڑھائی ہو جائے گی، پڑھائی پوری ہو جائے گی. لیکن پڑھائی پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نشچے بدھی دونوں ہو جائیں گے. رام والی آتما تو پہلے سے ہی نشچے بدھی ہے، کرشن والی آتما بھی نشچے بدھی ہو جائے گی. نشچے بدھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھائی پوری ہو گئی، सतो प्रधान वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गया। विश्व की बात सही मिल जानी चाहिए। शुरुआत किसकी होगी सतो प्रधान बनने की? राम वाली आत्मा उसके सहयोगी की शुरुआत होगी, और कृष्ण वाली आत्मा निश्चय बुद्धि तो बनेगी पढ़ाई पर, लेकिन पढ़ाई पढ़ने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो 10 साल और मुदे हुए हैं। वो चंद्रवंशी चंद्रमा वाली आत्मा भी पढ़ेगी और चंद्रवंशी सारे ही पढ़ेंगे। अभी न चंद्रमा वाली आत्मा मानती है और न चंद्रमा को फॉलो करने वाले वो चंद्रवंशी बैठे हुए हैं माउंट आबू में, वो मान रहे हैं? वो भी नहीं मान रहे। तो आपकी बात का जवाब कि कृष्ण बच्चा अभी साकार में पढ़ रहा है या सिर्फ प्रवेश करने की बात है, है? प्रवेश करके करने की बात है या साकार में पढ़ रहा है कृष्ण बच्चा ब्रह्मा वाली आत्मा? पढ़ रहा है, निश्चय बुद्धि है पढ़ाई में, है? पढ़ाई में निश्चय बुद्धि है, बाप की पहचान है, सुप्रीम टीचर की पहचान है? नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता लक्ष्मीनारायण का चित्र में नीचे, कभी नहीं देखा? क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, हैं? वो लक्ष्मीनारायण चित्र में जो राधा कृष्ण है वो वाइब्रेशन दिखा रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं एक दूसरे को, या वाइब्रेशन की बात है? अरे वाइब्रेशन मन के संकल्पों से निकलता है या आंखों से निकलता है पता नहीं चल रहा है। राधा कृष्ण जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो वाइब्रेशन के आधार पर देख रहे हैं, या ऊपर लक्ष्मी नारायण जो खड़े हुए हैं सामने दृष्टि है, एक दूसरे ऐसे कर ऐसे करके भी नहीं देखते? ऐसे करके आंख घुटका के थोड़ा देखते हैं? कभी नहीं देखते। इसका मतलब वो वाइब्रेशन से उनका प्यार चल रहा है या दृष्टि से चल रहा है? वाइब्रेशन से चल रहा है। ज्यादा ऊंची और ताकतवर चीज कौन सी है? दृष्टि ज्यादा ऊंची चीज है या वाइब्रेशन ज्यादा ऊंची चीज है? वाइब्रेशन ज्यादा ऊंची चीज है। तो राधा कृष्ण का सत्युग में जो जन्म होगा काय से होगा? वाइब्रेशन से होगा। और राधा कृष्ण अपने बच्चों का जो अगले जन्म में जन्म देंगे सत्युग में दूसरे जन्म में, वो काय से जन्म होगा? दृष्टि से जन्म होगा।
हाँ, भारत के उत्थान पतन की कहानियों में
हाँ
ब्रह्माकुमारियों के बारे में क्या बताया जाता है?
ब्रह्मा कुमारियों के बारे में क्या बताओ? नीचे लिखा तो हुआ है, बाबा ने भी मुरली बोल दिया, नीचे लिख दो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। नहीं लिखा है? अरे तुम्हारे चित्र में लिखा हुआ है, कहाँ है सीढ़ी का चित्र? यहाँ है ही नहीं है? हाँ हाँ, ऐसा भाइयों ने ले लिया, भाई लोग हो गए भारतवासी। हाँ देखो उसे ध्यान से, सीढ़ी के चित्र में नीचे, सीढ़ी के चित्र में नीचे क्या लिखा है? बाबा ने जो डायरेक्शन दे दिया वो ही एडवांस पार्टी वालों ने लिखा है। क्या लिखा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। ये जितने भी सफेद पोष सन्यासी बैठे हुए हैं वो सब विपरीत बुद्धि होने के कारण उनका पद का विनाश हो गया। ये विश्व की बादशाही पाएंगे या सतयुग की बादशाही 9 लाख की पाएंगे? कौन सी बादशाही पाएंगे, हैं? सतयुग की 9 लाख के ऊपर बादशाही पाएंगे? विश्व की बादशाही कितने के ऊपर होती है? सारे विश्व के ऊपर। वो ऊपर चले गए तो ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते, और विपरीति बुद्धि नीचे लिखो विनश्य थे। ये भारत का चित्र है
बाबा।
हाँ,
तुझा दादी के द्वारा जो वाणी चलती है उसे अव्यक्त वाणी कहते हैं।
हाँ,
लेकिन 31 को जो वाणी चली
उसमें बाप दादा ऐसा बोल रहे हैं, बच्चों को शुभेच्छा दे रहे हैं, लेकिन आवाज जो था आवाज गुलजार दादी का था, पूरा आवाज
हाँ।
फर्स्ट को
हाँ।
और उसे क्या कहा जाएगा, बाप दादा का आवाज ही नहीं था
हाँ।
बोलते हैं बाप दादा बोल रहे हैं, बाप दादा बोल रहे हैं, दबी दबी आवाज देती थी दरबार
हाँ।
इस बार आवाज गुलजार दादी का ही था पूरा
हाँ।
तो क्या कहेंगे उसके,
तो गुलजार दादी जैसे साक्षात्कार में जाती है और साक्षात में जाने के बाद फिर जो आकर के बोलती है वो अपनी पावर से बोल रही थी,
हर बार आवाज दबी दबी रहती
है। हाँ उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि ब्रह्मा की सोल 18 जनवरी के बाद जब 21 जनवरी 69 को उनहत्तर को पहली अव्यक्तवाणी चलाई थी, वो आवाज से चलाई थी या गोसे से चलाई थी, गोसे की आवाज थी नहीं थी,
ऐसी नहीं थी।
69 में जो पहली वाणी चल रही थी 69-70 में वो आवाज से चलती थी, गोसे की आवाज नहीं थी, आवाज थी थोड़ी थोड़ी, इतनी ऐसी नहीं जैसे आजकल स्पष्ट आवाज नहीं आती है। उसका कारण यह है कि वो सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, वो आत्मा भी धीरे धीरे उनको निश्चय पैदा होता जा रहा है कि वास्तव में निराकारी स्टेज कुछ और चीज है, और जो निराकारी स्टेज है वो राम वाली आत्मा के साथ आने से उनकी कैसी स्टेज बन जाती है, निराकारी स्टेज बन जाती है। जब वो साथ हट जाता है तो सूक्ष्म स्टेज बनती है, सूक्ष्म शरीरधारी की उनको अनुभव होता है। अभी वो सूक्ष्म शरीर की स्टेज खत्म होने पर है।
हाँ
बाबा,
मैं बोले 13 महीने से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ
हाँ।
तो ज्ञान में चलते हुए तो मेरे साथ टीचर है, टीचर स्कूल में, तो उनका भक्ति मार्ग का अभ्यास बहुत बढ़िया है, तो मैं चलता चलता वो उन्होंने सबने बोल दिया कि ये थोड़ा सा पागल हो गया है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर एक दिन उन्होंने क्या कर दिया, मेरा भक्ति मार्ग के टीचर ने मेरा थोड़ा सा क्लू ले लिया, क्लू बोले तो मेरे टेस्ट ले लिया।
क्या टेस्ट लिया?
टेस्ट ले लिया, प्रश्न ले लिया कि ये तुम क्या कर रहे है, तुम्हारा क्या है तो बता दीजिए। तो ठीक है बोले भैया मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बोला ये बोले स्वर्ग के रचयिता एक चित्र लेके गया उनके पास और उनको बोल दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उन्होंने बोले आए ये तू पीछे 25 साल कितना साल पीछे लाए यार, ये तो सुख ईश्वर को मालूम है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हाँ बोलिए, तो मैंने बोल दिया तो इनका बाप कौन है। अरे यार बोले ये तो पागल ही पागल हो गया। तो मैंने बोला यार बता दीजिए ना इनका बाप कौन है। तो इन्होंने बताया तो बोला इनका बाप यही बोले ईश्वर है, तू बोले ईश्वर का बाप ईश्वर है, इनको इनका बाप कौन है कुछ बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा ना तू बता दीजिए, वो बोल रहे ये तो ईश्वर है ना यार, ये तो ईश्वर है ना। तो हाँ मैं भी मानता हूँ ईश्वर है, तो फिर इनका भी बाप है ना। तो बोले यार कैसा बात कर रहे यार। तो ठीक है बोले तो तुम बताओ,
माना तुम्हारी लंबी कथा है कथा का सार बता दो।
इनका बाप तो एक है शिव ईश्वर, शिव बाप है वो बिल्कुल निराकार है, वो कभी दिखता नहीं हो, उनको भी मालूम था लेकिन उनको क्यों, उनको जब किसी तारे लग गए ज्ञान को, तारे यार बोले तुम्हारे साथ एक दिन मुझे आना चाहिए।
अच्छा तो आया कि नहीं,
आने वाला है वो।
अच्छा चलो अब आप उसके टीचर बन जाइए। हाँ जी
शिवाजी
शिवाजी हाँ फिर वही बात पैदा हो गई। बाबा कहते मैं कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किसका है, हर एक आत्मा अपने वाणी से अपनी दृष्टि से अपनी वृत्ति से अपनी चलन से अपने व्यवहार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगी। ये पूछने की बात नहीं है। अगर पूछने से कोई कह दे कि शिवाजी का पार्ट मेरा है तो उसे आप मान लेंगे हैं? कोई कहे कि शिव बाबा का पार्ट मेरा है, कोई कहे नहीं शंकर जी का पार्ट मेरा है, कोई कहे राम का पार्ट मेरा है, तो आप मान लेंगे हैं? बाबा ने तो कहा है कि बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते।
बाबा नासिक में त्रिम्बकेश्वर है तो उसके पिंड नहीं दिखाई,
है
पिंड लिंग नहीं है,
हाँ
ऐसा खाली खड्डा है।
उसका नाम है त्रिअम्बकेश्वर, तीन अम्बाओं का ईश्वर। क्या नाम है? जो तीन देवियां हैं मुख्य है, उनका ईश्वर। तो जो वहां दिखाई देने वाली चीज है वो क्या होनी चाहिए? तीन अम्बाओं को दिखाया है ना, क्या दिखाया है?
हैं?
तीन अम्बाओं को दिखाया गया है, एक अम्बा का, दूसरी अम्बा का, तीसरी अम्बा का, तीन तीन अम्बाओं का दिखाया गया है। तो खड्डा ही होगा या ऊंचा कोई पहाड़ है, क्या चोटी होगी है? खड्डा ही होगा। और
हाँ नीचे बाबा नीचे,
हाँ हाँ हाँ। अरे ये सब रुद्रमाला के मण के भाई भाई बैठे हुए हैं तो ऐसे लगता है कि कोई भाई बोल रहा है। हाँ
विकर्म करने से पाप बनता है।
हाँ विपरीत, वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म,
पाप से सजा मिलती है।
हाँ
और सजा जैसे जैसे सजा खाएंगे वैसा वैसा पद पाएंगे। तो कोई
सुकर्म
करने वाले
हैं,
पुण्य कर्म करने वाले
हैं,
उनको क्या मिलेगा?
उनको ऊंचा पद मिलेगा।
पाप करने वाले को भी और पुण्य करने वालों को भी ऊंचा पद?
ऊंचा पद कहाँ बताया? पाप करने वाले को पाप का कर्म नीचा हुआ, नीचा कर्म वाले को नीचा पद मिलेगा, सुकर्म करने वाले को सुंदर पद मिलेगा। सुंदर पद है राजा रानी का। पाप कर्म करना वो नीचा कर्म है दास दासियों का, उनको दास दासी का पद मिलेगा, इसमें क्या बड़ी बात हुई? और
बाबा
शिवराग
में जो समझाते 5000 आज से 5000 साल पहले ये चक्कर घूमता रहता है तो उनको समझाए तो समझ ही नहीं आते वो
क्या?
आज से 5000 बरस ये चक्कर घूमता है ना, इसके चक्कर तो भक्ति मार्ग वाले को समझाएंगे तो वो समझ नहीं पाते।
आप सिर्फ बोलेंगे 5000 वर्ष, हर 5000 वर्ष के बाद ये षष्ठी चक्र जो का त्यों घूमता है, सिर्फ बोलेंगे कोई प्रूफ नहीं देंगे तो कैसे मान लेंगे? दुनिया आज बुद्धिमानों की है या बुद्धों की है? तो बुद्धिमानों के लिए तो उनको बुद्धि का भोजन चाहिए, बुद्धि का भोजन है तर्क। उनको वो पॉइंट बताओ जिसके आधार पर ये साबित हो कि हाँ ये दुनिया 5000 वर्ष की।
बाइबल में बोला है कि आज से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था बाबा।
वो बाइबल का पेज निकाल के लाओ, उसका प्रूफ निकाल के लाओ और उनको ये दिखाओ। देखो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। मानेंगे? यहाँ भाई बाइबल में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग मानते हैं 250-300 करोड़, जब वो 150-250 करोड़ क्रिश्चियंस मानते हैं तो हम भी मान लेंगे। फिर दूसरी बात क्या बताओगे? वो कहेंगे वो तो क्रिश्चियंस मानते हैं, हम नहीं मानते, तो क्या बताओगे फिर? तो ऐसे प्रूफ इकट्ठे करो, प्रूफ बताओ ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई सबसे पुरानी है, वो सबसे पुरानी खुदाई में जो पुरानी पुरानी मूर्तियां मिली हैं, पुरानी पुरानी चीजें मिली हैं, वो कोई भी 2500-3000 वर्ष से पुरानी नहीं मिली है। जितनी भी लिंग मूर्तियां मिलती हैं वो भी 2500-3000-4000 वर्ष पुरानी मिलती है। तो वो भी एक प्रूफ है कि दुनिया 5000 वर्ष पुरानी है। फिर बताओ, महाभारत में भी लिखा हुआ है कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था। वो ही महाभारत युद्ध की निशानियां आज भी देखने में आ रही है, भारत में खास, दूसरे देशों में नहीं, भारत में खास देखने में आ रहा है। जितना जातिवाद के ऊपर झगड़ा हो रहा है, इतना जातियां किसी भी दूसरे देश में नहीं है, दूसरे धर्म में भी नहीं है। वो सब मिलजुल करके आपस में खाना खाते हैं, रहते हैं और आना जाना करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ जातियों के आधार पर कितना विद्वेष है। उन्हें बताओ, जितनी भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं और उन राजनीतिक पार्टियों को लेकर के आपस में मुड़फोटाल हो रही है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो रही है। जितने छोटे छोटे राज्य भारतवर्ष में बटते जा रहे हैं, बट रहे ही नहीं है, बट रहे हैं। देखो, मध्य प्रदेश था है, उड़ीसा था, ये क्या नाम तुम्हारा, ये बिहार था, इनमें से छोटा थोड़ा हिस्सा लेकर के छत्तीसगढ़ निकाल दिया, अलग बन गया। पहले उत्तर प्रदेश की शक्ल नक्शे में शेर जैसी थी, उसका शेर का सर काट दिया, उसे उत्तरांचल बना दिया, बनाया ना। तो ऐसे ऐसे कटिंग करते जा रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना अलग कर दिया और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। तो ऐसे खंड खंड होते जा रहे हैं। ये खंड खंड होते जाना ये लड़ाई की निशानी नहीं है, है? ये द्वैतवाद बढ़ रहा है, दो से चार, चार से आठ, आठ से दस हिस्से बढ़ रहे हैं, ये लड़ाई की निशानी नहीं है। अंदर अंदर आग सुलग रही है। जितने छोटे से देश में यहाँ भाषाएं हैं, ढेर की ढेर भाषाएं, एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी से बात ही नहीं करना चाहता। तमिलनाडु में चले जाओ, वहां हिंदी तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तो देखो कितना विद्वेष फैला हुआ है भाषाओं के आधार पर। ये सारी बातें बताओ तो उनको बुद्धि में बैठेगा क्या, महावारी महाभारत गृह युद्ध की स्थिति अभी भारत में पैदा हो रही है, आग अंदर अंदर सुलग रही है हिंदू मुसलमानों में। पहले भी यवन थे और आज भी यवनों का राज्य है भारत में, बहुत प्रभाव है। उनके वोट सबसे ज्यादा जीत और हार दिखा देते हैं। तो ये ढेर सारे प्रूफ इकट्ठे करके उन्हें बताने पड़ेंगे। ठीक है, करेगी ऐसे थोड़े कि द्वापर में जिनमें एक बार प्रवेश के लिए कर लिया उनमें फिर आगे के जन्मों में फिर प्रवेश होगा ही नहीं। जो आत्माएं द्वापर शुरू होते ही एकदम तमो प्रधान बन गई और उसमें इब्राहिम या इब्राहिम जैसे और इस्लामियों ने प्रवेश कर लिया किया ना, है? तो वो आत्माएं फिर आगे चल करके 2500 वर्ष जो रह गया है उसमें फिर दोबारा तमो प्रधान नहीं बनेंगी, है? और ही जल्दी बनेंगे। वो इस्लाम धर्म की आधार मूर्त आत्माएं हैं जो सतयुग त्रेता पूरा होने पर, 2500 पूरा होने पर तमो प्रधान बन गई, कमजोर बन गई। वो आगे चल के और जल्दी तमो प्रधान बनेंगी या देर में बनेंगी? और जल्दी बन जाएंगी। तो बार बार प्रवेश होता है ऊपर से आने वाली आत्माओं में, आत्माओं का। नीचे वाले भारतवासियों में। कोई बच्चे की आवाज आ रही है? हाँ
याद कैसे करना है? तार नहीं दिखता।
याद कैसे करना है?
तार नहीं दिखता,
स्टार नहीं दिखता। हाँ, जो तुमको कहते हैं कि शिव बाबा स्टार है, स्टार को याद करो, उनसे कहो तुम झूठ बोलते हो, बाबा ने ऐसे नहीं कहा मुरली में। बाबा ने तो मुरली में कहा बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि शिव बाबा स्टार है, बच्चों को सिखाना है ये शिव बाबा वाणी चला रहा है, ये शिव बाबा डायरेक्ट हमको वाणी सुनाता है। वो ब्रह्मा कुमारियां तो कागज की थर्ड क्लास वाणी सुनती है, तुमको तो शिव बाबा डायरेक्ट सुनाता है। शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो आंखों से देखती नहीं शिव बाबा को, हैं? देखती हो ना, तो उसको याद नहीं कर सकती। तुम अपनी अम्मा को देख लेती हो, याद करती हो, बाबा को नहीं याद करती है? बोलो। स्टार पे स्टार को नहीं, बाबा ने मना कर दिया बच्चों को नहीं बताना स्टार है, बाबा ने मना किया हुआ है मुरली में। बाबा ने कहा बच्चों को कभी ऐसे नहीं कहना शिव बाबा स्टार है, स्टार को याद करो, मुझे जावेंगे, उन्हें याद नहीं आवेगा, इसे सीधे बताओ शिव बाबा को याद करो।
तो बाबा
साकार
से निराकार भी नहीं बता सकते?
हाँ बताओ ना।
तो वही बताते हैं ना कि साकार भी निराकार को याद।
हाँ तो करो।
तो उसको निराकार नहीं दिखता
है। निराकार नहीं दिखता है तो आत्मा तो है, आंखों में से रोशनी दिखाई पड़ती है। जो साकार व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है बैठा हुआ है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं दिखाई पड़ती है? हैं, जब मर जाता है तो आंखें बटन हो जाती हैं या रोशनी निकलती है? बताओ, उसे समझाओ, किसी मरे हुए आदमी को दिखाना, डरना नहीं। और हाँ,
किसी एक गीता भाषा में हिंदी को याद करना सिखाया जाता है, और संगठन क्लास खत्म होने के बाद ज्ञान की चर्चा के आयोजन में खाना परोसा दिया जाता है, तो टोली टोली बोल के दी जाती है, तो ऐसे गीता भाषा में जाने से बहुत सारे आत्माएं अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं, तो ऐसी गीता भाषा में जाना उचित है?
दुनिया में भी जो स्कूल होते हैं वो स्कूल सब एक जैसे होते हैं कि कोई स्टैंडर्ड होते हैं और कोई थर्ड क्लास होते हैं? बाबा ने कहा कोई भी स्कूल है और स्कूल में निमित्त टीचर को देखो, उसमें भक्ति मार्ग के संस्कार एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? हैं? अलग अलग होंगे। जितने ज्यादा टीचर में भक्ति मार्ग के संस्कार होंगे, अपने स्टूडेंट में भी वो संस्कार डालेगी। अब जो होशियार स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे नहीं ये विद्यालय अच्छा नहीं है, हम तो बढ़िया विद्यालय में जाएंगे। तो बाबा कहते किसी भी विद्यालय में जाओ, सभी बाबा के विद्यालय हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम हमारे यहाँ क्यों आते हो, वहां क्यों नहीं जाते, वहां जाते हो तो हमारे यहाँ नहीं आना, हमारे यहाँ आते हो तो वहां नहीं जाना। ऐसे बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया। तो अगर टीचर ठीक से नहीं पढ़ाती है तो ऊपर रिपोर्ट करो। बाबा कहते एक दो की रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, 10-15 की रिपोर्ट आएगी तो या तो टीचर को ट्रांसफर कर देंगे या तो वो पाठशाला ही बंद हो जाएगी। और
गन्ना और आंवला क्यों रखते हैं?
आंवला बकटा होता है और गन्ना मीठा होता है, क्या गन्ना क्या होता है? मीठा होता है। जब हनीमून करने जाते हैं तो मून भी है और हनी भी है। हनी मीठा होता है, हनी मीठा होता है, और जो चंद्रमा है वो शीतल होता है। होता है कि नहीं? ऐसे ही जब वृंदा ने शादी की थी ना, तो उसके जीवन में भी वो हनी भी आया। हनी किसे कहते हैं? मिठास को। हैं? जैसे राम जी के दो पुत्र हुए, कहते राम जी त्रेता में थे, त्रेता में हुए ना, और राम जी के त्रेता में दो पुत्र हुए, उनमें एक का नाम लव, एक का नाम कुश। वास्तव में वो जो एक लव है, प्यारा, जिसका नाम रखा, वो इस्लाम धर्म है। क्या है? लव माने प्यारा, माने मीठा, वो गन्ना है, मीठा है। हाँ जी। और कुश माने कुशाघास, माना कांटा है, सारे संसार को एटम बमों से जला देगा, तो दुख होगा कि नहीं? कांटा क्या करता है? दुख देता है। तो वो कांटा हो गया और वो लव हो गया। ऐसे ही वृंदा जब भगवान की पत्नी थी ना, है भगवान की पत्नी ने जब जालंधर के साथ शादी रचाई, जालंधर को अपना पति स्वीकार कर लिया, तो जालंधर जो है वो राक्षस है या देवता है? राक्षस है। जो राक्षस होते हैं वो कामेंद्रियों से सुख देते हैं या ज्ञानेंद्रियों से सुख देते हैं? कामेंद्रियों से सुख देते हैं। वो जो इस्लामी जैसे कामेंद्रियों से सुख देते हैं, ऐसे वो लव कहो या उन्हें गन्ना कहो या उन्हें मिठास कहो, वो काम विकार की मिठास है। और उसका जो अंत है वो बखटापन है। जब मुंह खराब होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो जब उसका रिजल्ट निकलता है तो मुंह बखटा हो जाता है। ओम शांति।